सब में हो सहयोग भावना, सब में हो सहयोग भावना, सबको सब दे प्यार, सब चाहे तो सबके लिए हो सुखमय ये संसार, सुखमय हो संसार।
हम सब ने बहुत अच्छे गीत से शुरुआत की, तो विशेष सबसे पहले हम आदरणीय क्रीना दीदी जी का करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं। साथ ही साथ हम बहनों को निवेदन करेंगे गुलदस्ते और बेज से आपका स्वागत करें। विशेष क्रीना बेन की कई विशेषताएं हैं जो हम सभी आज के टॉपिक के द्वारा उनका विशेष लाभ लेंगे। आप विशेष एडमिनिस्ट्रेशन विंग के फैकल्टी मेंबर हैं। आप पिछले 49 सालों से ब्रह्मा कुमारी संस्था के साथ जुड़े हुए हैं। आपने 39 ईयर्स से पूर्ण रूप से अपना जीवन समर्पित किया है। वैसे आप जो आपने मुंबई की एनएम कॉलेज में कॉमर्स में ग्रेजुएट कंप्लीट किया, विशेष आप भारत में अनेक स्थानों पर मेडिटेशन कोर्स वर्कशॉप सेमिनार कॉन्फ्रेंस कराते रहते हैं और माउंट आबू में जो कहीं रिट्रीट होती है और विशेष ट्रेनिंग्स यहाँ होती चलती रहती है उसमें भी आप हम सबको लाभान्वित करते रहते हैं। विशेष संयुक्त राष्ट्र संघ में जो प्रोग्राम 4 हमारा चला उसमें से अंतर्राष्ट्रीय युवा पद यात्रा में आप मुंबई से दिल्ली तक जो प्रोग्राम चला उसमें भी पैदल यात्रा में आपने लाभ लिया। मिलियन मिनट्स ऑफ पेस जो हमारा प्रोजेक्ट था उसमें भी आपने पार्टिसिपेट किया और कई लोगों को उसने भी आपने लाभ दिया। तीसरा हमारा प्रोजेक्ट था ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर बेटर वर्ल्ड द प्लेस फॉर पीस, ऐसे कई प्रोजेक्ट में आपने अपना योगदान दिया है। आप विशेष नागार्जुन कंपनी जो है उसमें आप 1989 और 1999 में विशेष 10 साल तक आपने अपनी सेवाएं वहां प्रदान की जो वहाँ के आसपास कंपनीज बैंक मैनेजर तथा कई प्रकार के प्रोग्राम करके अनेक लोगों को लाभान्वित किया है। विशेष आपने नागार्जुन कंपनी रिलायंस बीपीसीएल पार्ले प्रोडक्ट गोदरेज और अन्य कई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आपने काम किया है। विशेष आप अभी मुंबई अंधेरी वेस्ट में आप अपनी सेवाएं वहाँ इंचार्ज रूप में दे रहे हैं और विशेष क्रीना बेन है उसका सरल स्वभाव और सरल वाणी के द्वारा मधुर वाणी के द्वारा अपने हर्षित मुख चेहरे से कई प्रकार के वाणियों के द्वारा उन्होंने अनेक लोगों को लाभान्वित किया है। तो आज का जो टॉपिक है द मोटिवेशन मंत्र, उसके बारे में हम सबको प्रेरणाएं देंगे। आदरणीय क्रीना दीदी जी, ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद रेखाबेन। रेखाबेन हमारी राजकोट से आए हुए हैं, वो भी इस एडमिनिस्ट्रेशन विंग की आप फैकल्टी है, लेकिन राजकोट में हमारे 17 सेंटर है, 17, और उसमें आप एक सेवा केंद्र संभालती है। थैंक यू। हमने आज कौन सा गीत सुना अभी जिस पे हमने एक्सरसाइज की? कौन सा गीत था? नहीं याद है? जीवन से ना हार जीने वाले, है ना? जीवन से कब कोई हार जाता है? जब कब कोई व्यक्ति जीवन से हार जाता है? अच्छा, बहुत कुछ करने के बाद भी जब नहीं पा सकता, अच्छा, जब तब वो जीवन से हार जाता है। जब वो नहीं पा सकता तो उसके अंदर कौन सी भावना आती है? हेट्रेड की भावना आती है, और हेट्रेड की भावना दुख देती है, सुख देती है? हेट्रेड माना नफरत की भावना हमें दुख देती है, सुख देती है? अगर वो सुख की भावना में होता तो क्या वो जीवन से हार जाता? नहीं। दुख की भावना में आया तो व्यक्ति को जीवन से हार जाने का संकल्प आता है। और हमने ये भी सुना गीत में कि सुख दुख है जीवन के साथी, सुना ना? सुख दुख है जीवन के साथी। तो जिन्होंने भी सुख को साथी बनाया है हाथ खड़ा करे। सुख को साथी बना लिया है हाथ खड़ा करे। अच्छा, और जिन्होंने दुख को साथी बनाया है हाथ खड़ा करे। दुख को भी साथी बनाया है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत जरूरी है। अगर सुख को साथी बनाया है तो दुख को भी साथी बनाना पड़े। अगर दुख को दुश्मन के रूप से, कौन बैठे हैं जो दुख को दुश्मन के रूप से देखते हैं? हाथ नहीं खड़ा करेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन जब तक हमारा दृष्टिकोण दुख के लिए एक दुश्मन की तरह होगा तो क्या होगा? जितनी बार दुख आता जाएगा हमें जीवन में रहने की उम्मीद कम होती जाएगी, नेगेटिव भावनाएं अपने अंदर बढ़ती जाएगी। दुख आता भी तो उसी के लिए है ना, कि मनुष्य की दुर्भावनाएं बढ़ जाए, ऐसा है? ऐसा है? दुख परिस्थितियां आती है ना जो हमें अच्छी नहीं लगती है, हम उसे नहीं चाहते हैं, लेकिन वो परिस्थितियां आती है तो अंदर से ही दुख शुरू हो जाता है या परिस्थिति में कुछ होने के बाद दुख शुरू होता है? अच्छा, चेक करो, कभी कभी परिस्थिति भी अभी शुरू भी नहीं हुई और दुख पहले आ गया, क्योंकि हमने बोल दिया मुझे ये नहीं चाहिए, मेरे लिए नहीं है ये, पहले ही दुख आ गया, समझा? और दुख साथी नहीं है, दुख दुश्मन है। तो परिस्थिति के सॉल्यूशन तरफ बुद्धि जाएगी या परिस्थिति में फंसती जाएगी? बुद्धि फंसती जाएगी। और फिर हम किसको ब्लेम करते हैं? परिस्थिति लाने वाले को ब्लेम करते हैं। हम खुद, जैसे वो स्पाइडर होता है ना, वो कैसे अपने वेब में खुद फंस जाता है, ऐसे हम भी अपना बना हुआ बुना हुआ जाल में हम खुद ही फंस जाते हैं, फिर हम किसी और को ब्लेम करते हैं। तो अब यहां आए हो आप जीवन के प्रति अपना दृष्टिकोण बदलने के लिए, यहां आप थोड़ी बदल जाएंगे, ऐसा हो सकता है आप इधर 3 दिन में बदल जाएंगे। बिगिनिंग माना कौन सी बिगिनिंग, दृष्टिकोण बदलने लगता है। आपको यह भी तो पता होना चाहिए ना कि बिगिनिंग कौन सी है। दृष्टिकोण अपना बदलना शुरू हो जाता है कि मैं जिस रीति से देखती थी अब इस नॉलेज के ये यहां के सेशंस के अनुसार मुझे इस रीति से देखना चाहिए। बाकी कुछ नहीं बदलता है लेकिन दृष्टिकोण बदलता है, और वो भी आप अगर अंदर ठान लो तो वो बदला हुआ दृष्टिकोण रहेगा। नहीं ठाना तो हम लोग एक बार है ना विजयवाड़ा गए थे फॉर हेल्थ पर्पसेस, तो वहां पर सब बहुत अच्छी तरह से रहे, बिना सॉल्ट के बिना तेल के सब कुछ बहुत अच्छी तरह से रहे, सबको बहुत अच्छा लग रहा था। एंड में फिनाले में वो जो चलाते हैं वो कोऑर्डिनेटर भाई ने कहा कि अभी है ना आप लोग यहां से मुझे पता है कहां जाने वाले हो, वहां एक टेम्पल बहुत फेमस है, कोई छोड़ता नहीं है, विजयवाड़ा गए तो वो टेम्पल में जरूर जाते, तो बोला मुझे पता है आप लोग सब वो टेम्पल में जाने वाले हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वहां का प्रसाद ही सॉल्टी होता है। जिसने भी प्रसाद ले लिया खाने के लिए हम समझ जाएंगे कि उसी टाइम आपका सब थाना हुआ पानी में गया, क्योंकि एक बार वहां का प्रसाद खा लिया फिर आप घर वापस लौट के इस प्रकार का खाना नहीं खाने वाले हैं। फर्स्ट परीक्षा ही आपकी वो टेम्पल में आएगी। ऐसे यहां भी होता है, चलो आपने अपना दृष्टिकोण बदलने का प्लान बनाया है पर यहां से नीचे आबू रोड तक जाने के लिए भी आपको चेक करना पड़ेगा कि मैंने जो अपना दृष्टिकोण बनाया है वो है या नहीं। अभी भी बहुत जल्दी एनवायरमेंट हमें पकड़ लेता है, बहुत जल्दी। यहां एक ही बात सिखाई जाती कि एनवायरमेंट आपको नहीं पकड़े, आप एनवायरमेंट के मास्टर हो, आपको ऐसे ही चलना है। तो ये जो मोटिवेशन मंत्र आज टॉपिक है उसमें देखिए ये क्या लिखा हुआ है, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट अंटिल द गोल इज रीच्ड। याद है किसने बोला था? हाँ जी, स्वामी विवेकानंद जी ने बोला था। कितना अच्छा बोला है ना, और कितने यंग थे वो, और उसी उम्र में माना काफी यंग उम्र में उन्होंने ये अपना मंत्र बना लिया था अपनी लाइफ के मोटिवेशन के लिए। इसीलिए उनको आगे चल के बेस्ट गुरु मिले, बेस्ट। अगर आपको भी चाहिए आगे जाके आपको बेस्ट गाइडेंस मिले, आपको राइट पीपल मिले आपके जीवन के लिए, तो हर एक को अपने पास एक अपना मंत्र बनाना पड़ेगा। मंत्र किसको कहा जाता है? व्हाट इज मंत्र? मंत्र मींस जो मन के अंदर त्राही त्राही हो रही है, स्ट्रेस है, टेंशन है, फ्रस्ट्रेशन है, जो भी है उसको मिटाने के लिए हम मंत्र बोलते हैं। समझा? एक मंत्र रखते हैं अपने जीवन के लिए ताकि वो मंत्र हमें अपने उस लाइफ की परिस्थिति से बचा के रखे। एक बार एक राजा बहुत ही सक्सेसफुल, कितने युद्ध भी जीते हुए और बहुत माना कॉन्फिडेंट, तो भी उसने एक दिन अपने ज्वेलर को बुलाया और कहा कि मुझे ना एक सोने की ताबीज जैसा बनाना है, और उसने अपने मंत्री को कहा कि तुम ऐसा कुछ सोने के ताबीज में लिख करके रखो कि मुझे कभी भी लाइफ में अगर कहीं भी रुका तो वो सोने का ताबीज मैं खोलूं और उसमें जो लिखा होगा वो मुझे सदा आगे बढ़ाए लाइफ में। तो ज्वेलर ने भी हां बोला, मंत्री ने भी सोच लिया और उसे दे दिया पहनने के लिए, तो ताबीज पहन ली राजा ने। अब एक बहुत बड़े युद्ध में गया, बहुत बड़े युद्ध में बहुत बुरी तरह से हार खाई, माना उस युद्ध से उसको भागना पड़ा, भाग के अपनी लाइफ बचाने के लिए। और वह दूर जंगल में जाकर के एक झाड़ के नीचे थक हार के बैठा था, बस नाउम्मीदी में जा ही रहा था कि अब यहां से कौन सा रास्ता। तब उसको वो तावीज याद आई, उसने वो तावीज खोला और उसमें जो लिखा था वो पढ़ा। क्या लिखा था? ये भी बीत जाएगा, ये परमानेंट नहीं रहने वाला है, ये भी बीत जाएगा। जैसे उसने वो पढ़ा उसको तो मना एकदम जीवन वापस आ गया, जैसे उसको लगा किसी ने मुझे नया जन्म दे दिया। और वो फिर हिम्मत अपने में भरी और कैसे भी करके अपने राज्य में पहुंच गया। उसके बाद भी बहुत सारी युद्ध हुई और बहुत विजयी बन के आया, लेकिन हमेशा वो ताबीज खोल के देखता, ये भी बीत जाएगा। तो वो राजा ने एक मंत्र अपने साथ ऐसा रखा कि भाई मुझे जीत में भी आगे बढ़ना है और हार में भी आगे बढ़ना है। इतनी मना जरूरी है बात ये, अपने लिए ऐसा कुछ मंत्र रखना। कई लोग तो ओम का मंत्र करते हैं, कई कोई का नाम लेते हैं, कोई महामृत्युंजय जाप करते हैं, कोई गुरु का कोई नाम लेते हैं, कोई गुरु से कोई सीक्रेटिव मंत्र लेते हैं, ऐसे बहुत कुछ होता रहता है, सब करते रहते हैं। लेकिन मेजॉरिटी ऐसा होता है ना कि जब परिस्थिति आती है तब हम भूल जाते हैं, वो केवल उसी समय जो करना होता है उसी में याद रहता है। जब परिस्थिति आती है तब परिस्थिति इतना हमारे ऊपर हावी हो जाती है कि हमें उसमें से कुछ भी याद नहीं आता है। कुछ कुछ लोग उसके आधार से भी जीत पाते हैं, लेकिन मोस्टली उसका रिजल्ट ये होता है कि जब भी वो लोग ये मंत्र जाप करते हैं तो उनके मन को अच्छा महसूस होता है, सुकून महसूस होता है। ओनली फॉर दैट मच टाइम सुकून लगता है और एक हैबिट हो जाती है, इसीलिए किसी को उनको याद दिलाना नहीं पड़ता है, इसीलिए वो जरूर करते हैं। पर अगर वो खाली रिपीटेशन करते हैं तो कई बार वो छोड़ देते हैं बाद में, क्योंकि कितना व्यक्ति रिपीट करता रहेगा। इसलिए ऐसे भी केसेस देखे हैं जो थोड़े सालों के बाद छोड़ देते हैं। आप लोग में से कितने गायत्री मंत्र लिखते थे अभी भी लिखती हो? आज तो उसमें से आप चेक करो कि जो लिखते हो उसमें से आपको कैसे परिस्थितियों के टाइम याद आता है। क्या आप गायत्री देवी का आवाहन करते हैं कि मुझे आकर मदद करो, या उस मंत्र की शक्ति आप ऑलरेडी फील करते हो अंदर, है ना? तो ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज हमें मदद ना करे। ये मंत्र का मैं इंपॉर्टेंस बता रही हूं, पर मेन बात है कि हमें मोटिवेशन लाइफ में कैसे मिले और किस प्रकार का मोटिवेशन होना चाहिए, हम आगे देखते हैं। पहले डेफिनेशन तो देखे, जैसे मंत्र का देखा, मोटिवेशन इज अ प्रोसेस दैट इनिशिएट्स, गाइड्स एंड मेंटेन्स गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। आपने जो गोल सेट किया है उसके आधार पर जो आपको पहला स्टेप लेना है, आपको अपने आप को उस रास्ते पे गाइड करना है, आपको अपने जो गोल के लिए जो आपके अंदर की जो भावनाएं हैं वो आपको मेंटेन करनी है, व्यवहार मेंटेन करना है, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है मोटिवेशन। मोटिवेशन कोई मंत्र नहीं है, पर आपने अगर अपने जीवन में एक इस प्रकार का रास्ता निर्धारित किया है उसे मोटिवेशन कहा जाता है। एक होता है ना सुबह उठे और एक रूटीन मेंटेन की रोज की, उसमें कभी कभी कोई फर्क आ गया, कोई रिलेटिव को मिलने गए, कोई तीर्थ यात्रा पर गए, कोई सोशल काम पे गए, कभी कभी होता है, बाकी एक रूटीन में आप सेट हो जाते हैं। तो क्या उससे आपको मोटिवेशन मिल सकता है? नहीं मिलेगा, क्योंकि आप एक रूटीन में अपने आप को आपने फिक्स कर दिया है। आपको कहां पहुंचना है वो तो आपको पता ही नहीं है। अगर आपको पता ही नहीं है कि आपको कहां पहुंचना है, अब जैसे दो तीन फ्रेंड्स थे, वो लोग को एक बिल्डिंग में 70th फ्लोर पे जाना था, लेकिन लिफ्ट बंद हो गई थी। तो फ्रेंड्स ने कहा भाई हमको पहुंचना तो पड़ेगा ही, इसीलिए वो गीत गाते हुए, स्टोरीज कहते हुए, पजल्स सुनाते हुए, कैसे भी करके वो लोग चढ़े, ताकि उनको पता नहीं चले कि 70 फ्लोर्स हम कब चढ़ गए। तो ऐसे बहुत मनोरंजन के रीति से वो लोग ऊपर पहुंच गए, और जैसे वो उनके फ्लैट के पास आए तो देखा तीनों के पास चाबी नहीं थी। अब आपके पास चाबी नहीं है तो मंजिल पे पहुंच के भी क्या फायदा, है ना? एग्जैक्टली वो पर्पस के मुझे इस मंजिल पर क्यों पहुंचना था, वो पर्पस ही नहीं है, है ना? जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे 10 लाख रुपए कमाने तक पहुंचना है, 10 लाख रुपए हाथ में आ गए, फिर क्या होगा? 10 लाख रुपए आ गए हाथ में, फिर क्या होगा? अब 50 लाख बना? ऐसा ऐसा तो कभी कोई गोल बनता ही नहीं है। ऐसा कोई गोल है ही नहीं कि जिस पे आप पहुंच के सोचते हो हाँ बहुत ही कंटेंटेड हूं, मुझे जो करना था मैंने लाइफ में कर लिया। ऐसे तो कभी होता ही नहीं है। तो इसीलिए मोटिवेशन इज अ ड्राइव टू एक्ट, इट प्रोपेल्स अस। जैसे शिप में प्रोपेलर्स होते हैं ना, जब तक वो नहीं चलते हैं ना शिप आगे नहीं बढ़ सकती है। वो प्रोपेलर्स हेल्प करते हैं शिप को पानी में आगे बढ़ने के लिए। तो इट प्रोपेल्स अस टू बी क्रिएटिव। वो जो मोटिवेशन है मेरा, वो मुझे क्रिएटिव बनने के लिए मुझे उमंग उत्साह देता है, मेरे में न्यू स्किल्स लाता है। कई बार हमको कई साल एक एडमिन डिपार्टमेंट में हो जाते हैं, लेकिन आजकल तो ऐसी कंपनियों में है होते हैं जो आपको एडमिन से निकाल के अकाउंट्स में फटाक से डाल देंगे, और आप सडनली शॉक में आप अभी अकाउंट्स डिपार्टमेंट में बैठे हो, नॉट नोइंग व्हाट टू डू। 3 दिन तो आप अंदर यही सोचेंगे कि ये लोग ने मुझे क्या समझ के अकाउंट्स में डाला, मैं इतने 15 साल से एडमिन में हूं, मुझे इसमें कैसे डाला। इसी में 3 दिन तो बीत जाएंगे, यू विल नॉट एट ऑल बी कंफर्टेबल। पर ऐसा होता है ना, हमको जिस गोल पे पहुंचना है उस पे हमको नए स्किल्स भी तो लर्न करने पड़ेंगे। ये एग्जाम्पल था ना, जब चंद्रबाबू नायडू ने पहली बार ये तेलंगाना में ही वॉन्टेड टू इंट्रोड्यूस कंप्यूटर्स, तो कितने ऐसे ऑफिसर्स थे गवर्नमेंट में कि जो बिल्कुल ये चीज मतलब मालूम ही नहीं था क्या है, तो उनको लगा बाप रे अभी हम क्या करेंगे, हमको तो कुछ आता ही नहीं है इससे। पर उसने इतना मोटिवेट किया सबको, इतना मोटिवेट किया कि हरेक को ये स्किल भी सीखनी पड़ी, जबकि दे मस्ट बी 60s में ऐसे भी थे। तो उस समय तो स्टार्टिंग था, तो कितनी मोटिवेशन की जरूरत पड़ी होगी, बिकॉज ही वॉन्टेड एवरीबडी इन हिज यू नो इन हिज एंटायर क्या बोलेंगे द सेक्रेटेरिएट, ही वॉन्टेड एवरीबडी टू नो दैट, एवरीबडी टू हैव देयर ओन लैपटॉप और पीसी। पर वो समय बहुत डिफिकल्ट था। तो इसमें मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है कि नहीं? जरूर पड़ती है। तो इस प्रकार से अगर हमें अचानक की ऐसी कोई परिस्थिति आ गई और हम बिल्कुल तैयार नहीं है, इसका मतलब कि हमारी लाइफ में कोई मोटिवेटिव ड्राइव नहीं है, तभी हम ऐसे शॉक में रुक जाएंगे, स्लो हो जाएंगे, विल नॉट बी एबल टू टेक दैट टर्न वेरी इफेक्टिवली। और ऐसा तो कभी नहीं हुआ ना जीवन एक सीधा रास्ता हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। चलो आप एक ही डिपार्टमेंट में हो सालों से, पर लोग तो बदलते होंगे ना आपके साथ, नए नए लोग आते होंगे, तो वहां पर तो चैलेंज रहती है ना। सो अनलेस यू डोंट हैव दैट मोटिवेशन फ्रॉम इनसाइड, ऐसी कोई भी नई चैलेंज अगर आती है तो वो आपको डिप्रेस या अपसेट या मूड ऑफ करने में देरी नहीं करती है। इसीलिए हमारे लाइफ में मोटिवेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इधर आने से पहले भी मैं अपने आप को पूछ रही थी, व्हाट इज मोटिवेटिंग मी टू गो टू दिस सेशन। मैं उधर सबको कराऊंगी, बट व्हाट इज माय मोटिवेशन टू गो टू दिस सेशन, पूछना पड़ता है ना। एट एवरी स्टेप यू विल हैव टू आस्क व्हाट इज माय मोटिवेटिंग ड्राइव टू डू दिस सेशन। अगर वो आपके मोटिवेटिंग ड्राइव में नहीं बैठता है, आप मेंटली यू विल नॉट फील लाइक डूइंग इट, क्योंकि यू वांट टू बी फोकस्ड, यू वांट टू बी ऑन योर पाथ। भले ना कितने भी चैलेंजेस आ जाए, पर आपको एक गोल आपको अटेन करना है। अगर आप समझते हो कि वे मेरी पाथ में नहीं है, तो आपको बिल्कुल जीरो इंटरेस्ट रहेगा, आपको करने का मन ही नहीं करेगा। इसीलिए हरेक को, जैसे कहते ना, हम इधर धरती पर आए ही कोई पर्पस के लिए है। वी हैव ऑल कम विथ आवर इंडिविजुअल पर्पस, पर आज की तारीख में मेजॉरिटी पर्पस क्या हो गया है? मेजॉरिटी पर्पस क्या हो गया है? दो चीजें देखी है, आइदर इट इज यू नो मिंटिंग मनी, और इट इज लाइक टू हैव अ गुरु जिसको हम फॉलो करें। ये दो मेन चीजें हो गई है, बाकी सब चीजों में और कोई में नहीं, पर ये दो चीजें बड़ी मोटिवेटिंग हो गई है आजकल। पर हमें देखना है कि इज इट समथिंग विच इज कमिंग फ्रॉम विद इन, और इट इज कमिंग बिकॉज अदर पीपल आर डूइंग। लोग कर रहे हैं इसलिए मैं भी कर रहा हूं, मेरा खुद का पर्पस क्या है वही मुझे मोटिवेट करेगा, दूसरी किसी की बात मुझे मोटिवेट नहीं कर सकती है। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, एक जिसको कहेंगे इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मोटिवेशन माना जो अंदर से उभर के आ रहा है, अंदर से उभर के आ रहा है। और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक, माना जो बाहर की कोई सोर्स से मुझे मोटिवेशन आ रही है, बाहर का कोई मुझे उमंग उत्साह दे रहा है। तो इसमें एक एग्जाम्पल लेती हूं, आप ही बताना ठीक है। गांधी जी वकील बने और वो साउथ अफ्रीका से पहली बार इंडिया आए और एक ट्रेन में सफर किया। उधर उसको बहुत इंसल्ट करके, ट्रेन से धक्का मार के बाहर निकाल दिया। उसके बाद गांधी जी ने अपना कौन सा गोल बना दिया? अच्छा, भारत को स्वतंत्र करना या अंग्रेजों को भगाना? ज्यादा था अंग्रेजों को भगाना। भारत को स्वतंत्र करना ये बाद में था, लेकिन पहला अंदर से था कि इन अंग्रेजों को तो भगा के ही रहेंगे। ये एक है। कैन यू टेल मी वेदर इट इज एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक? मोटिवेशन बाहर का था या अंदर का? जो कहते बाहर का था हाथ खड़ा करें, और जो कहते अंदर का था, ऑन व्हाट बेसिस अंदर का था? थोड़ा माइक देंगे जी। मुझे ये सवाल आता है कि अगर सचमुच उनको भारत को स्वतंत्र करना था तो वो बाहर की देश में लॉ पढ़ने जाते? क्या वो इतना इंस्पायर होके वहां कर, क्योंकि अंग्रेज तो वही चाहते थे, कि भारत का एजुकेशन सब भूल जाए और बाहर की पद्धति ले. दिस वॉज द मेन थिंग ना, दिस वॉज द मेन अटैक बाई द इंग्लिश पीपल, कि पीपल इन इंडिया शुड फॉरगेट इंडियन एजुकेशन एंड दे शुड टेक एजुकेशन फ्रॉम अस फ्रॉम आउटसाइड. इवन साउथ अफ्रीका वॉज अ कॉलोनी. तो ये इंट्रिंसिक कहेंगे कि एक्सट्रिंसिक कहेंगे, क्योंकि उसको धक्का मारा, इतना इंसल्ट किया, तब उनको संकल्प आया. भले साउथ अफ्रीका में भी उन्होंने देखा कि भाई सारे इंडियंस जो है वो त्राही त्राही कर रहे हैं, उनके साथ नहीं इतना कुछ हुआ, पर त्राही त्राही इंडियंस कर रहे थे. तो उस समय उनको विचार आया मुझे भारतवासियों के लिए कुछ करना चाहिए. लेकिन जब उनको धक्का मारा ट्रेन से, तब उनको अंदर से और आया कि ये अंग्रेजों को भगाना चाहिए. सोच लो अच्छी तरह से. एक और एग्जाम्पल बताती हूं, रतन टाटा जी, वो भी बाहर के देश में थे और उनको एक होटल में वो बराबर सूटेड होके नहीं गए थे, तो उनको भी उस होटल से यू इंडियन करके निकाला गया. रतन टाटा ने क्या सोचा, मैं ऐसी होटल बनाऊंगा जिसमें कोई को भी ये देखना न पड़े कि मैं कहां का हूं, मैं कैसा हूं, लेकिन हर एक टाटा की बनी हुई होटल में आ सकेंगे. फ्रॉम वेयर डिड दिस कम? क्या केवल वो बाहर निकालने से ऐसा किसी को आ सकता है? ऐसा थॉट विच इज एन अनडिवाइडेड थॉट. अब आप कंपेयर करेंगे तो आपको लगेगा कि एक व्यक्ति का फिर भी एक्सट्रिंसिक था, लेकिन एक व्यक्ति का इंट्रिंसिक था. उसका अंदर का जो था ना, उसने बोला कि नहीं, हम तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, हम तो ऐसा करेंगे जहां सब अलाउड होंगे. तो कई बार हम देखते हैं कि कितना भी वो इंट्रिंसिक लगे तो भी वो एक्सट्रिंसिक ही होता है, कहीं बाहर के प्रभाव से ही होता है. अपने अंदर से मोटिवेट होना, या तो आप बहुत दुख भरी सिचुएशन से पास होकर आप अकेले बैठकर सोचते हो मैं क्यों हूं इधर, मैं क्या हूं, वहां से आपको कोई आंसर मिले और फिर वहां से आप अपने जीवन में आगे बढ़ो, तो कहा जाएगा कि ये इंट्रिंसिक है. बाकी किसी ने किया, किसी ने सक्सेसफुल बना, कोई ने ऐसा किया, मैंने भी उसी रीति से अपने आप को बोला, वो इंट्रिंसिक नहीं है. तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोटिवेशन खाली एक्सट्रिंसिक ना हो, पर इंट्रिंसिक हो, बाहर का नहीं अंदर का हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. हम एक्टिविटी करें, थोड़ा टाइम लेगा ये एक्टिविटी, पर मुझे 16 जन चाहिए स्टेज पर. आपके शूज निकाल के आना पड़ेगा. 16, कोई भी 16 आ जाए स्टेज पर, शूज चप्पल्स निकाल के आ जाइए प्लीज. पहला ग्रुप 8 का इधर रहेगा. आप सबसे पहले आए हैं तो आपके साथ आप ले लो 7 और यहां पर एक सेकंड ग्रुप होगा, आपके साथ और 7 जन ले लो, उधर ही खड़े रहे. हो गए आप 7 ही होंगे इधर, मना टोटल इनका गिनती करके और 7, मना टोटल 8. बाकी इधर आ जाइए प्लीज, इधर आ जाइए, सामने आ जाइए. 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 हो गया बस. 1 2 3 4 5 6 7 एक और आ जाएगा. आप प्लीज, थैंक यू थैंक यू, आप चले जाइए, थैंक यू. हाँ नहीं, एक मिनट. अब जो है ना, एक जो ग्रुप है वो वहां पर एंड में खड़े हो जाएंगे जहां से फूल शुरू होते हैं. जहां से फूल शुरू होते हैं, दिस इज योर एरिया, हाँ इतना, और आपको एंड तक वहां जाना है, फूल खत्म होते वहां आपको वो एंड से वो वाला जहां से स्टेज शुरू होता है पीछे वाला, और यहां यहां एंड तक, ठीक है। और दोनों टीम को एक ही चीज करनी है कि आपके पास जो भी है पहले आप साथ में हो जाओ, नहीं तो टाइम जाएगा। हाँ, और आपको शुरू करना है वहां से, बीच से नहीं, जहां से ये हाँ एग्जैक्ट वहां से शुरू करना है आपको। यहां आप इधर आ जाओ, नहीं तो हाँ जैसे ये दीवार है ना, पीछे की दीवार है देखो, ठीक है, वहां से शुरू करेंगे। आपको क्या करना है, दोनों टीम को आपके पास जो भी है उसे जमीन पे रख के आपको एक लाइन बनानी है एंड तक। आपके पास जो कुछ भी है, जो कुछ भी है उससे आपको जमीन पे रख के लाइन बनानी है, और आप दोनों में से कौन पहला बनाता है वो विनर होगा। ऐसे नहीं अभी शुरू नहीं करो, अभी शुरू नहीं करो, ओके, मैं कहूंगी 1 2 3 तभी करना, ठीक है। और आप लोग है ना, सुनो, यहां आना ये दरवाजे तक, हाँ यहां से वो दरवाजे तक आना, ठीक है। आपके पास जो भी है आपको जमीन पे रखते हुए, यूज करते हुए आपको अपने एंड गोल तक आना है, और आप लोग का टीम वर्क है, ठीक है। आपके पास जो भी है उसका यूज करके आपको वो दरवाजे से इस दरवाजे तक आना है, आपके पास जो है उसको आपको यूज करना है और एक लाइन बनानी है। हाँ, जगह छोड़ छोड़ के नहीं, लाइन बनानी है। आपके पास जो है उसको यूज करके आपको यहां से यहां तक, आपको यहां से यहां तक लाइन बनानी है। 1 2 3 स्टार्ट। आई जगह छोड़ी है आगे, आगे जगह छोड़ने, नहीं नहीं चीजों के बीच में बहुत जगह छोड़ी है, बहुत जगह छोड़ी है, बहुत जगह छोड़ी है, बहुत जगह छोड़ी है, बीच बीच में कितनी जगह छोड़ी है, ऐसे थोड़ी चलता है। हाँ चलो, कौन पहले करता है, करो करो, कौन पहले करता है, कौन करता है, नहीं नहीं एंड तक जाना है, एंड तक जाना है, यू आर मिसिंग वन थिंग, ग्रेट, इनका पूरा हो गया पहले, थैंक यू सो मच, नो इट्स नॉट बिकॉज ऑफ दुपट्टा, ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एक बार हाथ, एक बार उनको जोर से तालियां बजा के उनका प्रोत्साहन बढ़ाए। थैंक यू सो मच आप सबको, थैंक यू। इसमें क्या ऑब्जर्वेशन था, इसमें क्या ऑब्जर्वेशन था, अच्छा टीम वर्क। पहले तो मोटिवेशन का डिग्री तब बढ़ेगा जब देयर इज अ परफेक्ट टीम वर्क। दूसरा जी, क्वालिटी, गोल, अच्छा फोकस्ड ऑन द गोल, ओके। क्या यूटिलाइजेशन, यस। तो ये तो हम अपेरेंटली हर चीज में देखते हैं कि भाई गोल पर फोकस होता है, यूटिलाइजेशन पर फोकस होता है, और साथ में टीम वर्क यूनिटी पर फोकस होता है, राइट। But the motivation is when the team creates new ideas. है कि नहीं, new idea जब होगी तब उसमें real motivation आएगा। तो मेरे मन के अंदर था कि अगर ये लोग बहुत एक एक हाथ पकड़ के भी खड़े हो जाएंगे, line बन जाएगी, line बन जाएंगी, लेकिन जब हम इस पे फोकस करते हैं कि वी हैव टू ओनली पुट दोज रिसोर्सेज विच आर जस्ट फिजिकल इन व्हाट वी हैव टू डू, तो सोचो टेंशन कितनी बढ़ जाती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा हो आपके टीम में जो आपको एक सॉलिड आइडिया दे, जिसमें एक्सपेंस भी कम हो, जिसमें आपकी एनर्जी भी कम यूज हो और टाइम भी कम ले और आपके गोल को अचीव करे. इसीलिए इफ मोटिवेटेड पर्सन विल हैव, सो यू हैड दैट गायत्री मंत्र वन, गिव अ हैंड टू हर. तो इसीलिए मोटिवेशन विल कम ओनली व्हेन यू विल ऑलवेज नॉट ब्रेक द रूल्स बट यू विल ऑलवेज कम अप विथ अ न्यू आइडिया, विथ अ न्यू थॉट, विथ अ न्यू वे ऑफ लिविंग. तब आप देखना कितना एंजॉय करते हैं आप लाइफ को. एक होता है जीना और एक होता है लाइफ को एंजॉय करना. हमारा एंजॉयमेंट का थीम क्या है? आज पार्टी में जाके आए हो, अरे बड़ा मजा आया, वी रियली एंजॉयड. आज मूवी देख के आए, पॉपकॉर्न खाए, फिर हम रेस्टोरेंट में बैठे, आज हमें बहुत एंजॉय किया. हमारे कार्य के बिना कुछ भी काम है ना, पिकनिक पे जाना ऐसे तो एंजॉय होता है, पर कार्य में जब हमको रोज जाना होता है उसमें हम एंजॉय कर रहे हैं या लाइफ टोटली हम एंजॉय कर रहे हैं, वो कभी कभी नहीं होता है. तो हम यहां क्यों आए हैं? क्या अपने एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर बनाने यहां आए हैं कि टोटालिटी देखने आए हैं? आई एज एन इंडिविजुअल और मेरा जीवन, टोटालिटी देखने आए हैं आप, कि जिससे आपको हर एरिया में, हर डिपार्टमेंट में, आपके हर कंपार्टमेंट में, बहुत सारे कंपार्टमेंट है ना, सुबह जो है बाप बनना पड़ता है, मां बनना पड़ता है या बेटा बनना पड़ता है, फिर आगे बढ़ो तो बॉस बनना पड़ता है या सेक्रेटरी बनना पड़ता है, कोऑर्डिनेटर बनना पड़ता है, कितनी सारे संबंध होते हैं, रोल्स होते हैं जो बजाने पड़ते हैं. सो इन बिटवीन ऑल दिस रोल प्लेइंग यू रियली नीड टू बी मोटिवेटेड, है ना? तो ऑब्जर्व क्या किया गया है, जैसे वो एग्जाम्पल दिया था ना गांधी जी और रतन टाटा जी का, तो लोग जो है वो फाइनेंशियल वेल्थ या फिजिकल अट्रैक्टिवनेस या रिकग्निशन या फेम, यही लगभग गोल होता है. ये चार गोल मुख्य होते हैं. लास्ट में रिटायर होने पर थोड़ा सोशल वेलफेयर का भी हम थोड़ा सोचते हैं, या समझो हमने जो कमाया उसमें से 1% 10% हम दान के प्रति अगर रखते होंगे तो. बाकी मेनली ये चार चीजें ही हमें मोटिवेट करती है अपने गोल को अचीव करने के लिए, मना लाइफ को जीने के लिए. मना इससे हायर गोल तो मुझे नहीं लगता हमको टाइम है सोचने का भी, कि इससे भी कोई हायर गोल हो सकता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल मदर्स है, वो काम करती है, वर्क करती है या नहीं भी वर्क करती है, तो जब तक वो एक्टिव है ना तब तक उसका गोल रहता है कि मैं सबको सेटिस्फाई करूं, ऑफिस में भी करूं, घर में भी करूं, हस्बैंड को भी करूं, इन लॉज को भी करूं, बच्चों को भी करूं. एंड जब भी उनको पूछो ना ये सब कार्य के बीच में, तो कहते माय कंटेंटमेंट लाइज इन दिस, व्हेन आई एम एबल टू डू फॉर एवरीबडी ना आई एम सो कंटेंटेड सिस्टर. एक दिन आता है जब उसको सोचने में मजबूर हो जाती है कि मेरा क्या, मैंने किया तो है लेकिन अभी मेरे पास क्या है, मेरे लिए व्हाट इज लाइफ, शी इज ब्लैंक. क्योंकि उसने हमेशा दूसरों का सोच के ही करती रही. जब तक अभी आपको खुद को भी अंदर से कंटेंटमेंट नहीं आए तब तक लाइफ थोड़ी फुल है. ऐसे ही भाइयों का होता है, दे विल गो ऑन अर्निंग मनी एंड फील के देखा मैं अपने परिवार का कितना ध्यान रखता हूं, मेरे को कितने प्रॉब्लम्स आते हैं, कितने टेंशन होते हैं, आई तो डोंट लाइक द बॉस हुम आई एम वर्किंग विद बट येट आई एम डूइंग ऑल दिस फॉर माई फैमिली. और जब रिटायर होते हैं तो वही फैमिली हमें कंटेंटमेंट की महसूसता नहीं कराती है. देन यू से अरे आई अर्न सो मच फॉर दिस फैमिली. तो ऐसा बहुत कॉमन होता है. तो इसीलिए बाहर से जो चीजों का हम गोल रखते हैं ना, वो थोड़े समय के बाद हमें आईना दिखा देता है कि इसके लिए तुम नहीं थी, केवल इसके लिए नहीं थी. There was also something for your own life also. तुम्हारा स्पार्क जो है वो अभी तक काम नहीं किया. सो दिस कैन हैव अ लिमिटेशन एंड लीड अस टू डिराइव आर गोल्स थ्रू एनी वे. देन अगर हमारा फाइनेंशियल वेल्थ है, फिजिकल अट्रैक्टिवनेस है, रिकग्निशन है, फेम है, फिर हम कुछ भी कर लेंगे वो पाने के लिए आगे. जैसे राजा सिकंदर, उसको मोटिवेशन कौन देता था बचपन से पता है? राजा सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट को मोटिवेशन कौन देता था बिगनिंग से, बचपन से? नहीं पता, उसकी मां. अलेक्जेंडर को कुछ नहीं था मन में, लेकिन उसकी मां उसको फीड करती रहती थी ये विचारों से, यहां तक कि उसको सांप का जहर भी पिलाती थी कि जब ये बहुत बड़ा हो जाएगा और अगर उसको कोई पॉइजन करने का सोचे तो उसका असर उसको नहीं हो, इसलिए बचपन से उसको जहर पिलाती थी थोड़ा थोड़ा. यहां तक वो अपने बेटे को इस प्रकार से उसने बड़ा किया और वो बेटा सचमुच अपनी मां से मोटिवेट होके एक एक देश को जीतता गया, उसको कोई हार ही नहीं सकता था. लास्ट में मां ने गोल दिखाया, भारत तुम्हें यहां तक पहुंचना है. और जब वो भारत पहुंचा, व्हाट हैपेंड? यहां भी उसने लड़ाई की, लेकिन भारत की भूमि पर रहते हुए उसका माइंड चेंज हो गया. कमाल है. और उसने सोचा नहीं, मुझे वापस जाना है अपने देश. माइंड, धरती ने उसको वो मोटिवेशन से हिला दिया जो उसकी मां ने दिया था, और वो वापस अपने कंट्री जाने के वक्त ही उसने शरीर छोड़ दिया. और जो उसने लर्न किया भारत में, इसीलिए उसने अपनी सारी कमाई हुई, जो भी ज्वेलरी थी, जो भी था खजाना, वो सब उसने अपने डेड बॉडी पे रखवाया. दुनिया देखे कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, इट्स ऑल गोइंग विथ मी, कुछ नहीं रहेगा मेरे बाद. इतना बड़ा एम्बिशियस किंग, जब उसको रियल बात पता चली भारत की भूमि पर, ही केम टू नो कि दैट मोटिवेशन वॉज नॉट रियल. अगर हम जीवन के कुछ पहलू पर अगर गोल बनाएं, जैसे पर्सनल डेवलपमेंट पर, कम्युनिटी डेवलपमेंट पर, कोई मीनिंगफुल अर्थ सहित संबंधों में या स्पिरिचुअलिटी में, अगर हमारा गोल इस रीति से है कुछ, नॉट थिंग्स बट पीपल, द नीड ऑफ द सोसाइटी, जो भी है, अगर हमारा गोल उस तरफ है तो डेफिनेटली आपका मोटिवेशन अंदर से आएगा. काफी लोग आपके दुश्मन बनेंगे, लेकिन आपको कोई रोक नहीं सकता है. इतना पावर आपके अंदर आ जाता है जब आप ऐसी चीजों को अपना गोल बनाते हैं. और ऐसा नहीं रिटायर होने के बाद, नहीं, जीते जी आपको ऐसी चीजों में अगर कुछ एहसास होता है और वो आपका गोल बन जाए तो आपका मोटिवेशन अंदर से होगा. इसमें आपको कोई लिमिटेशन नहीं होगी, कोई लिमिटेशन नहीं. जितना भी करो उतना कम, ऐसी चीजें हैं ये. और करते जाएंगे उतनी खुशी आपको मिलती रहेगी, उतना आनंद, उतनी शांति आपको अनुभव होती रहेगी करते हुए भी. एक चेहरा हमेशा आपका मुस्कुराता रहेगा, ये कार्य करते हुए भी. एंड यू विल बी अवेयर एट एवरी स्टेप, अपनी जागृति होगी, आप परिस्थितियों से डरेंगे नहीं क्योंकि आप खुद जागृत होंगे. इसीलिए आंतरिक मोटिवेशन, प्रेरणा बहुत इंपॉर्टेंट है. अब आप देखिए अंदर से मोटिवेटर में अगर आप सोचने जाएंगे तो जल्दी से मनुष्य नहीं मन में आएगा. लेकिन आप चींटी को देखो कैसे मोटिवेटेड रहती है 24 घंटा. उसको कौन मोटिवेट करता है? मधुमक्खी देखो कैसे मोटिवेटेड रहती है, उसका तो सारा मध हम लोग ले लेते हैं, फिर भी उसको अंदर से लगता है मेरे मैं नहीं करूंगा तो ये दुनिया नहीं रह पाएगी, मुझे तो करना ही है, भले कोई भी ले ले लेकिन मुझे तो करना ही है. उसको वो कार्य करने में ही अंदर से मोटिवेशन है. कोई कोई एग्जाम्पल थोड़े अंश तक ले सकते हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर. मतलब वो भले क्रिकेटर बना बट ही वॉज डेवलपिंग एज अ ह्यूमन. ऐसा नहीं कहती हूं कि उनमें कोई त्रुटियां नहीं होगी, होंगी, कोई भी परफेक्ट तो है नहीं आज के जमाने में. लेकिन वो जिस रीति से अपनी जिंदगी जिया, जिस रीति से वो मानवता का रूप उसने पेश किया, नहीं तो वो क्या कुछ कर सकता था बीइंग नंबर वन इन द फील्ड ऑफ क्रिकेट. लेकिन उसने वो सब नहीं चुना क्योंकि वो सेल्फ मोटिवेटेड था अपनी लाइफ में. उसने वही किया जो उसके गोल में आता है. कितने चांसेस उसने लिए भी नहीं. ऐसे हमारे प्राइम मिनिस्टर अभी, मैं नहीं कहती हूं त्रुटियां नहीं है, लेकिन जिस रीति से वो कार्य कर रहे हैं, जब भी उनको पूछो आपका मोटिवेशन कौन है तो क्या कहते हैं? वो कोई भगवान का नाम थोड़ी लेते. उनका मोटिवेशन कौन है? हम भारतवासी. जैसे कि वो सबको जानते हैं, जैसे कि वो मना एक एक को जानता है, ऐसे कहते हैं कि नहीं मेरे भारतवासी, मेरे भारत के भाई बहनों के लिए मैं जो हूं सो हूं. भले वो जितना चाहते वैसे कर नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी उनका मोटिवेशन एक ही है. उनको आप कुछ दो या ना दो, जो भी है, बट ही हैज दिस नेचुरल मोटिवेशन. हमारी दादी प्रकाशमणि जी, जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड नियरली 36 इयर्स के लिए रही ब्रह्मा कुमारीज में, एंड दैट ऑल्सो आफ्टर अ फाउंडर. अ फाउंडर वॉज लाइक अ पिलर ऑफ स्ट्रेंथ, बट आफ्टर हिम एंड जब तक वो थे, तब तक जब तक पिताश्री ब्रह्मा बाबा थे, वी हैड अबाउट 350 सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया, और वेस्ट में तो कुछ भी नहीं था. और सेंटर्स भी कैसे थे? छोटे 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 छोटे, कोई 8 से 8 का भी होगा रूम, उसे ज्यादा नहीं था. ऐसे भी सेंटर्स थे, बस इनिशियल ग्रोथ था 350 जितना, क्योंकि बहुत हार्डशिप्स हमको फेस करनी पड़ी ना, कोई रहने ही नहीं देता था. बहुत ट्राई करते थे, जो भी लोकेलिटी में हम जाते थे बहुत ट्राई करते थे कि हम लोग वहां से निकल जाए. तो वी हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम इन जस्ट ओवरकमिंग दोज ऑब्स्टिकल्स. ग्रोथ की तो बात अलग है. तो जब तक हमारे फाउंडर थे देयर वर नियरली ओनली 350 सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया. लेकिन जब दादी प्रकाशमणि जी हमारे लीडर बने, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बने, वी सॉ के लाइक शी वॉज अ पर्सन हु कैन नॉट बी मोटिवेटेड एक्सटर्नली, जरा भी नहीं. अंदर से इतनी मोटिवेटेड थी कि उसने ये नहीं देखा कि पहले क्या हुआ है, आगे क्या होना चाहिए, नथिंग. शी जस्ट एज अ चाइल्ड ऑफ गॉड, इतना सबको एक साथ मिलाकर चलाना और फिर एक वट वृक्ष तैयार करना, जस्ट थ्रू इंस्पिरेशन, जस्ट थ्रू इंस्पिरेशन. इतना इंस्पायर, इतना मोटिवेट करती थी सबको कि कैसे भी करके करना है, इवन इफ इट्स द फर्स्ट टाइप ऑफ सेवा, शी वुड बी सो एंथुजियास्टिक टू डू इट. ऐसा नहीं कि बिकॉज आर फाउंडर हैज डन सो मच वी हैव टू कैरी फॉरवर्ड दिस लेजेंड एंड ऑल, नॉट एट ऑल. अंदर से उसको आता था दादी को. शी वॉज फुल ऑफ एंथुजियाजम एंड हैप्पीनेस फॉर डूइंग ऑल दिस. और नई नई आइडियाज, नई नई आइडियाज करके सबको मिलाते हुए चलना, इट्स वेरी डिफिकल्ट. और एक दिन भी उसका स्माइल न जाना, इट वॉज द ग्रेटेस्ट चैलेंज दैट यू नो शी वॉज ऑलवेज स्माइलिंग, ऑलवेज इंस्पायरिंग, वेदर टू अ न्यू स्मॉल पर्सन, यंग गर्ल, और वेदर इट इज द पर्सन ऑफ मेनी ईयर्स विथ हर. लाइक हर एटीट्यूड फॉर एवरीबडी वॉज द सेम, फॉर द सेम एंड ऑलवेज इंस्पायरिंग एवरीवन. ऐसा कैसे हो सकता है? हाउ इज दिस पॉसिबल? शी नेवर गिव लेक्चर्स. शी वुड गिव क्लास, बट शी वॉज नॉट लाइक अ वेल नोन स्पीकर लाइक मेनी अदर सिस्टर्स, यू नो. सो बीइंग इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड देन गिविंग क्लास टू अदर्स, बट 24 आवर्स सारा टाइम लोगों के साथ, अलग अलग नेचर, अलग अलग एटीट्यूड वाले लोगों के साथ रह करके ये सेवाओं को आगे बढ़ाना, एक दिन भी टेंशन नहीं, एक दिन भी टेंशन नहीं. इसको क्या बोलेंगे? कौन सा मोटिवेशन है ये? तो इसीलिए हम देख रहे हैं कि भले इतने ज्यादा नहीं होंगे, पर ऐसे एग्जाम्पल्स है जिसे हमको सीखने को मिलता है. समथिंग फ्रॉम विद इन मी अलोन कैन मोटिवेट मी. अगर कुछ भी याद नहीं रहे इस सेशन का, कोई बात नहीं, एक लाइन याद रखिए, समथिंग विद इन मी कैन अलोन मोटिवेट मी फॉर माय लाइफ. समथिंग विद इन मी विल हेल्प मी टू क्रिएट अ गोल फॉर माय लाइफ. बाकी कोई भी कंपनी में काम करना, रे करना, not necessary you want to reach a certain goal. It's because you want to be financially independent, you want to financially support your family. Ho sakta hai ki wohi goal ho. Ji puru, okay, just a second. Just but the last thing, one aspect of motivation is, tumhe kahi bolu ji?
Nahi,
okay. So the one aspect of motivation would be positive. If my motivation is I want to be positive, simple, small thing. पर वो कैसा होना चाहिए अपने लाइफ में, उसके लिए मैं आपको बताती हूं. Okay, anyway, so there was this manager called John, और ये John एक hotel का manager था, और उसका motivation था be positive. माना कोई भी चीज आती थी तो वो solution को देखता था, वो कभी problem को नहीं देखता था. और ये 365 days, उसका friend बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता था कि इसको ऐसा कैसे होता है, ऐसे कैसे 365 डेज कोई मोटिवेटेड हो सकता है. उसको कभी भी पूछो हाउ आर यू, तो बोलेगा आई वुड बी ट्विंस इफ आई एम बेटर देन दिस, माना इतना मैं ठीक हूं. कहते ऐसा कैसे हो सकता है? और उसके जो दूसरे जो काम करने वाले थे होटल में, वो लोग भी सभी जो है उसे इतने मोटिवेट रहते थे कि कई बार अगर वो जॉब भी छोड़ के दूसरे होटल में जाता था ना, तो वो लोग भी सब उसके पीछे आ जाते थे, सबको उसी होटल में जाना है जहां पर ये है, इतना माना वो मोटिवेशन के वाइब्रेशन देता था। तो एक बार क्या हुआ, उसकी फ्रेंड को मालूम पड़ा कि अरे वो तो हॉस्पिटल में है, तो वो वहां गया और उसने देखा कि वो तो बेड पे लेटा हुआ है और उसे बोला क्या हुआ, हाउ आर यू, तो उसे बोला इफ आई बेटर आई वुड बी अ ट्विन, ऐसी हालत में भी तुम कैसे बोल सकते हो, क्या हुआ था? तो बोला एक बार ऐसा हुआ कि मैं भूल से बीच लास्ट पीछे वाला दरवाजा मैंने खोल के रख दिया था और मैंने बंद करना भूल गया और हम लोग अंदर थे तब तक तीन चोर घुसाए, सबके पास गन था और जैसे वो लोग हमारे सामने पॉइंट करके खड़े रहे तो उसने बोला जो भी कैशियर है हमको कैश दे दो। तो मेरे पास चाबी का झुमका था तो मैं वो ताला खुल रहा था लेकिन वो चाबियां सब मेरे हाथ से गिर गई। तो एक को शक हुआ कि ये कुछ स्मार्टनेस करने जा रहा है तो उसने तुरंत मेरे को 2-3 गोलियां मार दी। तो मैं गोलियां खा के ऐसे नीचे गिर गया और बेहोश होने से पहले मैंने केवल अपने आप से पूछा, क्योंकि वो रोज सुबह अपने आप से पूछता था, आज मैं क्या हूं दिन में, आज मुझे क्या चाहिए, मैं कैसा होऊंगा? और वो जैसा सोचता था ना वैसा ही, जो डिसीजन उसने सुबह लिया वैसे ही वो चलता था, अपने डिसीजन से चलता था, थोड़ा भी अपने डिसीजन को बदलता नहीं था। तो वो हमेशा भाई आई एम हैप्पी टुडे, तो मना हैप्पी, कोई भी गुस्सा करने का सिचुएशन आएगा तो भी उसको अपना डिसीजन याद रहेगा आई एम हैप्पी, बिल्कुल नहीं बदलेगा उसमें। और इतनी हैबिट उसने डाल दी थी सुबह सुबह अपने डिसीजन पे चलना भले दिन में कोई भी परिस्थिति आए। तो उससे चॉइस पूछा अपने आप को कि हमेशा वो दो चॉइसेस लेता था रोज सुबह, तो उससे चॉइस किया मुझे जीना है कि मरना है, तो तुरंत उसने अपने आप को कहा मुझे जीना है और वो बेहोश हो गया। फिर जब जागा तो उसने देखा वो स्ट्रेचर पे है और सारे जो नर्सेज है डॉक्टर्स है सब उसकी केयर कर रहे हैं और उसको कह रहे हैं पैरामेडिकल स्टाफ कि भाई ठीक हो जाओगे, डोंट वरी ठीक हो जाओगे। सो तो टाइम वो स्ट्रेचर से ऑपरेशन थिएटर तक गया तो भी उसको क्या सुनाई दे रहा था, तुम ठीक हो जाओगे, बिकॉज ही हैड डिसाइडेड कि आई विल लिव। और फिर जब वो ऑपरेशन थिएटर में गया तो पूरा बहुत ही गमगीन वातावरण था, एकदम सीरियस थे सभी। उसमें जो हेड नर्स थी उसने उसको पूछा तुम्हें कोई एलर्जी है, कोई बात की एलर्जी है? तो उसने कहा हाँ जी है, मुझे इन गोलियों से एलर्जी है, जल्दी निकालो। तो फिर उसने वो बोला, सब हंसने लगे और ऑपरेशन थिएटर में भी बहुत लाइट वातावरण हो गया और उसका ऑपरेशन भी सफल हो गया। वो बाहर आ गया तो वो फ्रेंड को पूछता दिखाओ कहाँ गोली लगी, नहीं नहीं मुझे नहीं देखना, पर तेरा तो बहुत ही वंडर है। कहता जब आप डिसीजन लेते हो ना सुबह, फिर आपको सारा दिन उस डिसीजन से चलना है, फिर देखो आपकी लाइफ कैसे हो जाती है, यू गेट सेल्फ मोटिवेटेड विथ योर ओन डिसीजन। So this is where I would like to end today's session and I hope you have got a little motivated by this and thank you so much. Om Shanti.
Om Shanti. Hum bahut bahut Krina Didi ji ka dhanyavad karte hain. Hum sab ko choti choti baaton ka mantra deke kaise aage badhe wo vidhi sikhai, to aap sab ne zarur apni diary mein apna mantra aage badhne ke liye लिखा होगा या मन में जरूर नोट किया होगा, क्योंकि उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही, मंत्र अर्थात मन में त्राही त्राही करना, अर्थात वो शब्द बार बार अपने मन में आते रहे और हम हर परिस्थितियों से पार होते रहे। तो जैसे दादी प्रकाशमणि जी का उदाहरण दिया तो हमारी दादी जी का भी मंत्र था निमित निर्माण और निर्मल वाणी से उन्होंने पूरे विश्व का दिल भी जीता और सारी संस्था को एक करके रखा। तो ऐसे जो पीछे कई दादियां हैं जो उनके मंत्र से वो पूरे विश्व तक इस संस्था को पहुंचा के लाया। अभी हम विशेष सुनेंगे, मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे आदरणीय मधु दीदी जी का। हम बेज और गुलदस्ते से स्वागत करते हैं और करतल ध्वनि से भी स्वागत करते हैं। खास आप गुजरात में बाटवा सेवा केंद्र के इंचार्जेस, आप लास्ट 42 ईयर्स से इस संस्था से जुड़े हुए हैं और 40 ईयर्स से आप पूर्ण रूप से इस संस्था में आप समर्पित रूप से सेवाएं दे रहे हैं। आप एडमिनिस्ट्रेशन विंग के फैकल्टी मेंबर हैं। आपने देश विदेश में कई जगह जाकर मेडिटेशन का अभ्यास कराया है। आप विशेष एक लेखिका भी है जो हमारे गुजराती ज्ञानमृत में ज्ञानमृत आता है उसका उसमें आपका बीच बीच में लेख लिखते रहते हैं और कई लोगों को अपना लाभ देते रहते हैं। आदरणीय ब्रह्मा कुमारी मधु दीदी जी,
ओम शांति, ओम शांति। अभी हम सभी ने करीना दीदी का मोटिवेशन के बारे में सुना, बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाई, सबको अच्छी लगी। अच्छी लगी। आप यहाँ आए हो आध्यात्मिक रिट्रीट में, तो कैसा लग रहा है आप सबको? अच्छा लग रहा है? आप सभी एंजॉय कर रहे हो? कर रहे हो? अच्छा, सभी एक बार खड़े हो जाए। एक दूसरे को अभिनंदन करेंगे, हाथ मिला के धन्यवाद करेंगे, एक दूसरे को दिल से दुआएं देंगे कि आप सदा जीवन में खुश रहेंगे। आप सदा जीवन में खुश रहे, दिल से दुआएं देना, ठीक है? ओके, बैठ जाए सभी। मेडिटेशन के लिए कहा गया है तो अभी मैं एक छोटी सी कहानी सुना देती हूँ, बाद में हम थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, फिर फाइनल मेडिटेशन करेंगे, ठीक है? एक बार एक फरिश्ता धरती से गुजरता हुआ धरती के लोगों को देखते देखते स्थिति परिस्थिति को देख करके भगवान के पास पहुंच गया और भगवान को कहने लगा, हे भगवान, हे मेरे प्रभु, धरती निवासी सभी आत्माएं आपकी संतान हैं और आज बहुत टेंशन में जी रहे हैं, बहुत तकलीफ में हैं, बहुत दुख में हैं। कोई को क्या परिस्थिति है, कोई को क्या परिस्थिति है, मेरे से तो देखा ही नहीं गया, प्रभु आप कुछ करिए ना। तो भगवान ने जवाब दिया कि मैं जानता हूं, मैं सब जानता हूं धरती पर क्या हो रहा है, बहुत दुख है, अशांति है, टेंशन है, बहुत तकलीफ है। मैं ये भी जानता हूं कि सभी इस संसार की आत्माएं मेरी संतान है, मेरी संतान है, फिर भी दुखी है। उसका कारण बताते हुए भगवान ने कहा, देखो आज की दुनिया में लोग सुबह में एक तो देरी से उठते हैं और मोबाइल से ही शुरुआत हो जाती है जीवन के, मोबाइल देखने लग जाते हैं और फिर स्नान पानी करते हैं। भगवान ने कहा मेरे पर ध्यान ही नहीं है उसका, मेरे को देखते ही नहीं है, तैयार होते और फिर मेरे मंदिर के आगे भी पहुंच जाते, दिया करते, आरती करते, धूप जलाते हैं और फिर दो चार ऊपर ऊपर से नाम ले लेते हैं और फिर फिनिश करते हैं और घड़ी पर देखते हैं टाइम हो रहा है, ऑफिस में जाना है। हर वर्ग के लोगों की बात है, हर एक को अपने अपने काम में जाना है। फिर नाश्ता तैयार होता है, नाश्ते पर बैठते हैं, भगवान ने कहा मैं उसके पास ही बैठ जाता हूं, लेकिन नाश्ते पर मेरे को याद नहीं करते हैं, मेरे को याद नहीं करते हैं कोई। फिर नाश्ता पूरा किया, फिर अपना सामान वगैरह लेके के चले जाते हैं गाड़ियों में, तो कोई फोर व्हील में जाता है, कोई टू व्हील में जाता है, कोई साइकिल पर जाता है, मैं उसके साथ चला जाता हूँ। भगवान ने कहा मैं उसके साथ बैठ जाता हूँ, लेकिन उसका मेरे पर ध्यान नहीं। रास्ते में ट्रैफिक आ जाता है, ट्रैफिक आता है तो सोचने लगता है अरे ट्रैफिक, मेरे को देरी हो रही है, कब मैं जाऊं, कब मैं फ्री होऊंगा, ऐसे व्यर्थ सोचते सोचते भगवान ने कहा मेरे को याद ही नहीं करते, ऐसे ही समय व्यर्थ गवा देते। फिर ऑफिस में पहुंचते, टेबल पर कुर्सी पर बैठते हैं, तो भगवान ने कहा मैं भी उसके बाजू में कुर्सी पर बैठ जाता हूं, लेकिन वो मेरे को याद ही नहीं करता। काम शुरू करने के पहले याद तो करना चाहिए, लेकिन वो करता ही नहीं है। फिर सारा दिन काम में लगे रहते हैं, व्यर्थ विचारों में लगे रहते हैं, मोबाइल बार बार देखते रहते हैं, न्यूज देखते रहते हैं। फिर घर आता है थक करके, परिवार के साथ भोजन खा लेता है, लेकिन मेरे पर ध्यान ही नहीं जाता है, और रात को टीवी देख करके, मोबाइल देख करके, मोबाइल बंद करके लास्ट सो जाता है। फिर दूसरे दिन वही दिनचर्या, तो भगवान ने फरिश्ते को कहा मैं सभी को मदद करना चाहता हूँ, सबको शांति चाहिए, सबको सुख चाहिए, सबको आनंद चाहिए, सबको शक्ति चाहिए, लेकिन आज के मानव मुझे इतना याद कहाँ करता है। याद करे तो मैं उसको मदद करूँ ना, उनको शांति दूँ ना, उसको सुख दूँ ना, उनकी हर मनोकामनाएं मैं पूरी करूँ ना, लेकिन आत्माएं मेरे को इतना याद नहीं करती है। तो आज हम सब की क्या सिचुएशन है, ऐसी है ना कि जिसको ज्यादा याद करना चाहिए उतना हम उसको याद नहीं करते हैं, और याद ज्यादा अपने सगे संबंधी की बातें, व्यर्थ बातें, परिवार की बातें सोचते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं, प्रभु पर छोड़ते ही नहीं। गीता में भगवान ने अर्जुन को कहा हे अर्जुन तुम चिंता मत करो, युद्ध करो, तुम अपना कर्म करो, कर्म करते तुम मुझे याद करते रहो, कर्मयोगी बनो। तो हमें क्या बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए, गीता ने तो हमें सिखाया है, लेकिन हमने ध्यान पर नहीं लिया है। हम सब निमित्त आत्मा है, कारोबार संभाल रहे हैं, निमित्त है, लेकिन हर कर्म करते करते हमें मेडिटेशन पर ध्यान देना चाहिए। कहते हैं ना दिल से की हुई प्रार्थना भगवान तक पहुंच जाती है, भगवान हमारी हर बात को सुनता है, और वो हमें रेस्पॉन्स भी देने के लिए तैयार है। यहाँ जो राजयोग मेडिटेशन सिखाया जाता है, तो राजयोग मेडिटेशन क्या है, आंतरिक यात्रा है, अंतर मन की यात्रा है, मन बुद्धि से हमें परमात्मा को याद करना होता है। मेडिटेशन करने से हमारे अंतर मन को शांति मिलती है, दिल को सुकून मिलता है। मेडिटेशन करने से, मेडिटेशन वो शक्ति है जो असंभव को भी संभव कर सकती है, मनवांछित फल देती है। हमारे स्वभाव संस्कार में चेंज ला सकती है। तो मेडिटेशन करने से बहुत सारे फायदे होते हैं, बहुत सारे फायदे होते हैं। एक बार करके तो देखें। तो उसके लिए आज हम थोड़ा मेडिटेशन के लिए प्रैक्टिस कराऊंगी, ठीक है? करने के लिए सब तैयार है? तैयार है, ओके। अभी मेडिटेशन में अभी सबसे पहले प्रैक्टिस करेंगे तो मन बुद्धि से आप जहां से आए हो, जिस एरिया से आए हो, जिस देश से आए हो, जिस शहर से आए हो, ऑल इंडिया से आए हो, नेपाल से भी आए हैं, तो जो जहां रह रहे हैं वहां हम जाएंगे अभी मन और बुद्धि से। मन का स्वभाव है जो चीज को याद करते हैं, जैसे गुलदस्ता है, आपने मन में याद किया गुलदस्ता है तो वैरायटी फूल, वैरायटी कलर के बारे में आप सोचने लग जाएंगे, बुद्धि उसमें ही लगी रहेंगी कि ये वैरायटी सुंदर गुलदस्ता फूलों का है। तो अभी हम सभी आंख नम करके सीधा होकर के बैठेंगे, सीधा होकर के बैठेंगे और मन बुद्धि से जैसे मैं विचार देती जाऊं उसी अनुसार ही मेरे साथ ही चलना, ठीक है? मन बुद्धि को पकड़ के रखना, मन बुद्धि को आपको पकड़ के रखना है, मेरे विचारों के साथ ही आपको चलना है। चलिए मेरे साथ, ओम शांति। आप यहां से खड़े हो गए और धीरे धीरे चलते चलते हॉल से बाहर गए, सीढ़ियां नीचे उतर रहे हैं, फिर आप बाहर जा रहे हैं, चलते रहे हैं, बाहर का गेट आया, गेट के बाहर आप पहुंच गए, वहां आप सभी के लिए अपना पर्सनल हेलीकॉप्टर खड़ा है। हेलीकॉप्टर का दरवाजा खुल जाता है और आप सब अपने अपने हेलीकॉप्टर में बैठ गए। हेलीकॉप्टर का दरवाजा बंद हुआ, आप चले हेलीकॉप्टर में, हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ रहा है, उड़ता जा रहा है, आप हेलीकॉप्टर में बैठे आनंद ले रहे हैं, ठंडी हवाएं आ रही है। थोड़ी देर के बाद हेलीकॉप्टर आपके स्थान पर पहुंच जाता है, आपके घर के सामने ही हेलीकॉप्टर उतरता है और आप के लिए दरवाजा खुलता है। दरवाजा खुलते ही आप नीचे उतरते हो, घर के सामने आपके घर का दरवाजा खुला है, आप अंदर घुस गए। अंदर जाते ही आपके कोई भी परिवारजन सामने खड़े हैं, आपको पूछ रहे हैं, अरे आप तो कॉन्फ्रेंस में गए हो। तो आपने कहा हाँ, लेकिन मैं अभी यहां आपसे मिलने आया हूं, थोड़ी देर के लिए आया हूं। फिर आपके परिवार वाले पूछते हैं, चाय पियोगे? तो आप कहते हो हाँ, हम चाय जरूर पिएंगे। वो फटाफट चाय बना करके आपके सामने चाय का कप रख देते हैं, आप आराम से सोफे पर बैठकर गरम गरम चाय पी रहे हो, धीरे धीरे पी रहे हो और सोचते हो, वाह चाय बहुत अच्छी बनी है। धीरे धीरे आपने चाय खत्म कर दी, फिर आप खड़े हो गए और आपको याद आया कि अभी माउंट आबू ज्ञान सरोवर में कॉन्फ्रेंस चल रही है, मेडिटेशन का सेशन चल रहा है, मुझे जाना है। फिर परिवारजन से आपने विदाई ले ली और आप निकल पड़े। आपके लिए हेलीकॉप्टर खड़ा है और आप हेलीकॉप्टर के पास पहुंच जाते हो और दरवाजा खुलता है, आप बैठ जाते हो और फिर से दरवाजा बंद होता है, हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ता जा रहा है। उड़ते उड़ते फिर से इस ज्ञान सरोवर के गेट के सामने खड़ा रह जाता है, दरवाजा खुलता है, आप बाहर निकल जाते हो। फिर चलते 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 आ रहे हो, सीढ़ियां चढ़ रहे हो और हॉल में प्रवेश कर रहे हो, और हॉल में प्रवेश करते अंदर आते आप अपने कुर्सी पर अपना स्थान ग्रहण कर रहे हो। ओम शांति। सब गए थे घर? गए थे? जो घर गए थे हाथ उठाए। शाबाश, सभी गए थे। ताली बजाए, अपने लिए ताली बजाए। आप सभी ने मन बुद्धि को कंट्रोल में रखा और मेरे साथ आप चल पड़े अपने अपने घर। ठीक है, ऐसे ही हम चलेंगे परमधाम, परमधाम चलेंगे। जैसे आज का सेशन आप सभी ने सुना, स्वयं का परिचय कल सुना कि हम कौन हैं, हम शरीर नहीं, हम एक आत्मा हैं, और हमारी आत्मा के पिता परमात्मा शिव निराकार है। कहाँ का रहने वाला है? परम धाम का रहने वाला है। तो अभी हम मन बुद्धि से परम धाम चलेंगे, सभी चलेंगे। चित्र देखा ना आज, परम धाम कहाँ है? पांच तत्वों की दुनिया से पार ऊपर प्रकृति का छठा ब्रह्म तत्व। तो सब रेडी परम धाम चलने के लिए? मेडिटेशन करेंगे अब, रियल मेडिटेशन। ठीक है, मन बुद्धि को एकाग्र करना, कहा भागना नहीं चाहिए मन और बुद्धि। ओम शांति। मैं इस शरीर में विराजमान, दो आंखों की प्रकृति में विराजमान एक चेतन शक्ति, ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा हूं। मैं आत्मा एक शक्ति हूं जो इस शरीर को चला रही हूं। मैं आत्मा एक ऊर्जा हूं, एक पावर हूं, आंखों से देख रही हूं, मुख से बोल रही हूं, कानों से सुन रही हूं, हाथों से कर्म कर रही हूं। मैं आत्मा इस सृष्टि रंगमंच पर निमित्त पाठ बजाने आई हूं। मुझ आत्मा का घर यह देह नहीं है, यह दुनिया नहीं है, मुझे आत्मा का घर, प्रकृति का छठा ब्रह्म तत्व है, जहां चारों तरफ लाल सुनहरा प्रकाश छाया हुआ है, जहां असीम शांति है, परम शांति है। मैं आत्मा इस शांति धाम की निवासी हूं, मैं यहां इस शांति धाम में परम शांति का अनुभव कर रही हूं। इस शांति धाम में मेरी आत्मा के पिता परमात्मा शिव ज्योति स्वरूप विराजमान है। मैं आत्मा परमात्मा शिव को देख रही हूं, मैं उनके सानिध्य में हूं, परम शांति का अनुभव कर रही हूं। मेरी आत्मा का सच्चा संबंध परमात्मा शिव के साथ है, वही मेरे माता पिता बंधु सखा मित्र साचन गुरु सब कुछ वही है। वो ही सत्यम शिवम सुंदरम है, सत्चित आनंद स्वरूप है, वो शांति के सागर है। मैं आत्मा भी उनकी संतान शांत स्वरूप आत्मा हूं। मेरे पिता परमात्मा शिव पवित्रता के सागर है, मैं आत्मा भी उनकी संतान पवित्र आत्मा हूं, शुद्ध आत्मा हूं। मेरे पिता परमात्मा शिव सर्वशक्तिवान है, उनकी शक्ति की किरणें चारों तरफ फैल रही है, पूरे ब्रह्मांड में फैल रही है। मेरी आत्मा के ऊपर भी पड़ रही है, मैं आत्मा भी शक्ति स्वरूप बनती जा रही हूं, परमात्मा की दिव्य शक्तियों का अनुभव करती जा रही हूं। परमात्मा से मंगल मिलन करते करते फिर से मैं ब्रह्मांड से इस साकार सृष्टि में नीचे पाठ बजाने आ रही हूं। मैं आत्मा सदा हर कर्म करते करते परमात्मा शिव को याद करती रहूंगी। मैं अपने हर कर्म को श्रेष्ठ बनाऊंगी। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति,
ओम शांति, ओम शांति। हम मधु दीदी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, हम सबको बहुत अच्छी अनुभूति कराई। अभी हम विशेष अनुभव सुनेंगे रिस्पेक्टेड भ्राता अद्वैत गढ़नायक, जो हमारे बीच में खास दिल्ली पालम विहार सेंटर से आए हैं, तो आप जरूर अपना अनुभव सुनाने के लिए स्टेज पर आएंगे। भ्राता रिस्पेक्टेड अद्वैत गढ़नायक, आप विशेष डायरेक्टर जनरल नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ICCR, इंडियन काउंसिलिंग ऑफ कल्चरल रिलेशन न्यू दिल्ली। विशेष आप ऑल इंडिया पर जितनी भी आर्ट गैलरी है आपकी ही देखरेख में चलती है। खास आप अभी दिल्ली इंडिया गेट में जो सुभाष चंद्र बोस का 28 फुट का स्टेच्यू जो बना गया है उसका श्रेय भी आपको ही जाता है। आपको प्राइम मिनिस्टर ने भी कई प्रकार के प्रोजेक्ट दिए हैं जो आप प्रैक्टिकल में करके दिखाते हो। आप जितने ही बड़े हैं उतने ही निर्माण चित है। आप विशेष आपके युगल सहित यहाँ आप इस कैंपस में पहुंचे हैं, तो हम बहनों को रिक्वेस्ट करते हैं गुलदस्ते और बेज से आपका दिल से स्वागत करते हैं। आदरणीय भ्राता रिस्पेक्टेड अद्वैत गढ़नायक जी,
ओम शांति। इतना अच्छा वातावरण में एक्चुअली हम अलग दुनिया सब चले गए थे, अभी फिर रियल दुनिया पे आए कि एक सुभाष बोस का स्टैचू आपने कभी देखा होगा, इंडिया गेट में लगा अभी सुभाष बोस, वहां पर जॉर्ज फाइव का स्टैचू था, अभी प्रधानमंत्री उसको इनॉग्रेट किए थे। और उस स्टैचू का बारे में मैं थोड़ा बताऊं, आज सुबह मैं इसे घूम रहा था, यहां पर भी काफी पत्थर मैंने देखा है, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि पत्थर है ना, हमारे लिए सबसे ओल्डेस्ट फैमिली मेंबर पत्थर है, उसको हमारे बारे में सब कुछ पता है, ये प्लानेट में हमने क्या किया, कैसे कैसे लाइफ। जब हम आप सोचिए कि कभी हमको बातचीत करना भी नहीं आता था, थोड़ा हम केव में थोड़ा पेंटिंग बना के पत्थर का ऊपर हम बोलते थे हम यहां जा रहे हैं, यहां कर रहे हैं, सब कुछ। जब कुछ सिस्टम भी नहीं था तो उसने हमको सिखा, और एक एक लेयर भी पूरा इतिहास बताता है हमने कैसे ये प्लैनेट भी डेवलप किया। अभी हम जो बातचीत भी कर रहे हैं वो पत्थर उसको ऑब्जर्व करता है, उसको रिसीव करता है, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, वो साउंड को हम रिकॉल भी कर सकते। तो इस तरीके का एक मीडियम है हमारे लिए, मेरे लिए तो मीडियम नहीं है, बियॉन्ड मीडियम मैं सोचता हूं उसको, क्योंकि एक मैग्नेट फील्ड क्रिएट करता है हमारा धरती में, जिसका वजह से लाइफ सब कुछ। कभी कभी पत्थर को देखता है ना, वो ऑक्सीडाइजिंग हो जाता है, वो सांस भी लेता है, उसमें लगता है कि उसके अंदर वो लाइफ है, उसको फील करते हैं। और कुछ पत्थर ऐसे होता है मेल स्टोन होता है, कुछ फीमेल स्टोन होता है। तो सुभाष के लिए जब हम पत्थर ढूंढ रहे थे तो वो फीमेल स्टोन ढूंढ रहे थे, वो बहुत हार्ड होता है, क्योंकि पुराना स्टोन हम सोच रहे थे कि पुराना इतिहास हमको याद रहेगा, और एक ब्लैक कलर ढूंढ रहे थे जो कलर सारी चीज को ऑब्जर्व करता है। क्यों, इसलिए शायद माँ काली की कृष्ण का रूप कला ऐसे मानते हैं कि ब्लैक कलर जो होता है ना सारी चीज को ऑब्जर्व करता है, उसका अंदर वो ताकत है। तो हमने सारी कुछ तैयार किया और पत्थर वहां साउथ से तैयार किया लाने के लिए, तेलंगाना एक जगह है, वो पत्थर का वेट 300 टन्स, तो उसको लाने के लिए स्पेशल व्हीकल डिजाइन किए, और उसका रास्ता में आया और सारे कुछ तैयार हो गया। अचानक ऐसे एक दिन आया कि मैं जो सोच रहा हूं, जो तैयारी कर रहा हूं, क्योंकि एक साल भर उसको, क्योंकि आपको सुभाष बनाने हैं तो सुभाष बनना पड़ता है, तो उसी एंगल में आपको सोचना पड़ता है। आपका लाइफस्टाइल भी ऐसे हो जाता है, सुबह उठते हैं सालूट लगाते हैं जैसे लगता है, तो एक सिस्टम में आप चले जाते हैं और उसी रिदिम में हम क्रिएट करते हैं कि नहीं, स्टैचू कैसे होगा और उसका टेक्सचर भी कैसे होगा, उसका कपड़ा कैसे होगा, कि उसका फेस का जो फीलिंग क्या रहेगा, क्योंकि एक नेशन को लीड कर रहे थे, जो जिसका अंदर में मजबूत जैसा कि ताकत था कि मैं जो आवाज देता हूं वो आवाज पूरा वहीं पर, मतलब इतना मजबूत आवाज और इतना पावरफुल व्यक्ति को तैयार करना, और अचानक ऐसे एक दिन आता है कि नहीं आप नहीं करेंगे और दूसरे कोई आर्टिस्ट आके उसको तैयार करेंगे। मैं पागल हो गया अचानक, सरप्राइज कि आप सोच रहे हैं कि इस तरीके कुछ होगा। तो उस टाइम उर्मिला बहन जी से मेरा बातचीत, मतलब थोड़ा सा हम एनजीएम आए थे, एक पौधे भी हम लगाए थे, थोड़ा बातचीत हुआ था, तो फिर मेरे को अच्छी तरह से गाइड किए कि मैंने तो सोचा कि पूरा जिसको देख रहा था एक नेगेटिव, क्योंकि एक अचानक शक जैसे राजा हरिचंद्र जैसे था ना, फिर तुरंत आप नीचे आ जाते हैं तो अजीब सा लगता है एक स्थिति। तो तुरंत मेरे को काफी गाइड किए, मेरा वाइफ भी है साथ में, तो उन्होंने भी काफी सिस्टम, एक्चुअली दोनों को हम गाइड किए कि कैसे हम तो पहले मंदिर सारी घूम रहे थे सारी कुछ, और मेरा वाइफ तो सारा मंदिर घुमा दिया मेरे को एक महीना के अंदर। तो एक जब आरती बहन से मेरा बातचीत हुआ, एक्चुअली मैंने उनको पहले से बोल रहा था मेरा पास टाइम नहीं है, बात नहीं हो सकता क्या है, लेकिन धीरे धीरे उनने मेरा पीछे लगा और रात को 9 बजे 10 बजे जब भी मैं टाइम देता था उसी टाइम वो मेरे से बात करते थे और मुरली सुनाते थे सुबह सुबह बात करके। एक सिस्टम को ऐसे तैयार किए कि नहीं, मैं वो स्टैचू कि बाबा ने कुछ सोचा होगा कि नहीं और कुछ बात होगा, तो आप इतना नर्वस मत होइए कि खड़े होइए और उसको काम करिए और होगा। और मैंने जिद में मेरा ऑफिस आप देखे होंगे, नेशनल गैलरी ऑफ मन्नाड कोई जाएंगे तो इंडिया गेट का सामने है, तो वहां पर देखेंगे ऑफिस के अंदर पत्थर आया और ऑफिस में वो स्टैचू बना, जो आर्टिस्ट आए और मेरा गाइडेंस में सारी काम हुआ, और जो भव्य रूप आज आप देख रहे हैं, तो भव्य रूप आप कभी भी इंडिया में जाएंगे, इंडिया गेट जाएंगे तो वहां पर उसको देख सकते। एक्चुअली ये मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस है कि कैसे आप मजबूत हो, नहीं तो फिर इतना आपको लगता है जिसको मैं रूम से निकाला नहीं, आप सोच नहीं सकते, 2 महीना बंद करके रहा और जो सिस्टम है ना आपको पूरा नेगेटिव तरफ ले लेता है और आपको लगता है कि नहीं तो अजीब सा, क्योंकि आर्टिस्ट मैं बता रहा था ना कि पत्थर का साथ भी हम लोग दोस्ती कर लेते हैं, जो पत्थर को कार्विंग करते हैं ना शुरू शुरू में तो झगड़ा होता है, लेकिन वो उसका स्किन धीरे धीरे इतना सॉफ्ट हो जाता है कि आपका स्किन का साथ मर्ज होता है, फिर एक दोस्ती शुरू होता है, जब दोस्ती होता है ना फिर और कुछ बात होता है, अलग दुनिया में हम चले जाते हैं। तो इस तरीके सोच से फिर रिवाइव करना, और उर्मिल बहन से मैं एक्चुअली इतना खुश हूं, अभी भी सुबह आज बात कर रहे थे कि एक सिस्टम जो स्पिरिचुअल पावर है जो आपको मोटिवेटेड करता है कि नहीं आप कर सकते, उसको कुछ भी प्रॉब्लम आता है उसको आप सॉल्व कर सकते। और आरती बहन को बहुत बहुत धन्यवाद जो एक्चुअली मेरे लिए इतना मेहनत की, आप सोच भी नहीं सकते, पूरा दिन रात लगा दिए और मेरे को खड़ा किया। आज जब मैं जिस स्थिति में हूं वो सोच नहीं सकते, अगर 6 महीना पहले मेरे को कोई देखा होगा तो अजीब सा स्थिति था। और उर्मिल बहन जी को जानते हैं, उसको मैंने उसको किस तरीका हमने तैयार किए, और सबको बहुत बहुत धन्यवाद जी।